शांति। आदरणीय प्रभा बहन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम सभी उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी आप ज्ञान सरोवर में निर्मला दीदी की जगह पर सेवा संभाल रहे हैं। आप सभी निर्मला दीदी को जानते हैं, वो अभी विदेश सेवा पर गए हुए हैं, तो अपने स्थान पर तो हम भी उनका लाभ ले रहे हैं। वैसे आप भरूच जो गुजरात में है, वहां पर 40 वर्षों से उससे संबंधित सेवा केंद्र भी आप संभाल रहे हैं। 50 वर्षों से आप समर्पित हैं। पहले आपने मुंबई में और उसके अलावा नेपाल में भी अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बाद से भरूच में ही सेवाएं देते हैं। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, तो आपके अनुभवों से हम लाभ लेंगे। आपका विषय है वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन। बाबा ने हमें इस बार विशेष इशारा दिया था, वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन करना है, क्योंकि वृत्ति का प्रभाव व्यक्ति पर भी पड़ता है और वायुमंडल पर भी पड़ता है। वृत्ति बहुत सूक्ष्म होती है, तो जो हम स्मृति में रखते हैं वो हमारी वृत्ति बन जाती है, फिर वैसी ही हमारी दृष्टि होती है, वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। तो कैसे उससे पूरे वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है और उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसको विस्तार से आप समझाएंगे प्रभा बहन जी।
ओम शांति। प्यारे प्यारे शिव बाबा के सभी ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने, आप सभी विशेष योग तपस्या कहे भट्टी में आए हैं और विशेष आप सभी भट्टी के अंदर कहते हैं ना तपते हैं, तो भट्टी में तपने से क्या होता है, है? परिवर्तन हो जाते। कोई भी चीज अग्नि में डाली जाती है तो वो अग्नि उसको रूप परिवर्तन कर देती है। ऐसे ही बाबा ने भी हम सबको योग की भट्टी, योग की तपस्या में बिठाया है, जिससे हम सबका विशेष परिवर्तन हो जाता है। पहला परिवर्तन तो हम यही कहेंगे कि जब से हम सभी बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाबा के बच्चे बनने से हमारे जीवन के अंदर बहुत बहुत परिवर्तन आ गया है, है ना? पहला परिवर्तन हम ये कहेंगे, जीवन में जो परिवर्तन है उसमें हमारी सोच में परिवर्तन आया है, हमारे विचारों में बहुत परिवर्तन आया है। और जब विचारों के अंदर परिवर्तन आता है तभी मनुष्य के जीवन में प्रैक्टिकल परिवर्तन होता है। जब तक स्मृति परिवर्तन नहीं है तब तक जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आता है। तो बाबा ने हम सबको अपना बना करके सबसे पहला जो हम सबकी सोच को बाबा ने परिवर्तन कर दिया है, और जिस सोच के आधार पर ही हम सभी विशेष पुरुषार्थ करते हैं। तो आज का विषय बताया वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन, वृत्ति को कैसे चेंज करना है, और जब वृत्ति चेंज होती है तो वायुमंडल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे संकल्प होते हैं तो कहते हैं संकल्पों की सृष्टि, सृष्टि कैसे बनती है, संकल्पों से। तो जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, जैसी वृत्ति वैसे संकल्प, कहते हैं ना दृष्टि वृत्ति स्मृति और कृति, चार बातें हैं। तो बाबा ने हम सबको चारों बातों को चेंज किया, दृष्टि को भी, वृत्ति को भी, स्मृति को भी और कृति को भी। तो पहले पहले बाबा ने हमारी वृत्ति को चेंज किया है। वृत्ति के अंदर बाबा ने हम सबको क्या स्मृति दिलाई कि आप कौन हो, है ना? पहला पहला संकल्प बाबा ने हम सबको कौन सा दिया है, आप कौन हो, है? तो हम ज्ञान के आधार से तो यही कहेंगे कि हम आत्मा हैं, है ना? तो हम आत्मा हैं, और हम आत्माएं कौन सी है? आत्माएं हैं, है? श्रेष्ठ आत्माएं हैं, है? और श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान है। भगवान ने, शिव बाबा ने हम सबको अपना बनाया है। तो पहली स्मृति के तुम आत्मा हो, और तुम आत्माएं कौन सी आत्माएं हो? श्रेष्ठ आत्मा, भगवान के बच्चे हो। श्रेष्ठ आत्मा भगवान के बच्चे हैं, ये बाबा ने हम सबको स्मृति दिलाई, और इस स्मृति से ही हम सबकी वृत्ति क्या हो गई, चेंज हो गई। हो गई ना चेंज, कि अब हमें क्या करना है। पहले की स्मृति हमारी क्या थी, और उस स्मृति के आधार पर हम सब चलते थे, है? और अब हमारी जो बाबा ने स्मृति को चेंज किया, तो अब हमारी चलन चेंज हो गई, हमारे विचार चेंज हुए। तो कहा ना स्मृति वृत्ति दृष्टि और कृति, कृति चेंज हो गई, दृष्टि भी चेंज हो गई, है? तो दृष्टि भी अभी हमारी कौन सी बन गई? बाबा ने कहा तुम भगवान के बच्चे आपस में कौन हो, भाई भाई हो। तो भाई भाई की क्या हो गई, वृत्ति हो गई, और भाई भाई की वृत्ति से हमारे अंदर कौन सा फायदा हुआ, है? भाई भाई की वृत्ति से हमारे जीवन के अंदर कौन सा फायदा हुआ, है? पवित्रता और प्रेम आया। भाई भाई की दृष्टि से हम सभी एक बाप की संतान है, एक बाप से हमारा संबंध है, और हमारा सबका आपस में भाई भाई का संबंध है। तो संबंध हमारा है, तो संबंध के अंदर क्या आता है, स्नेह आता है, संबंध के अंदर प्यार आता है। तो जहां स्नेह और प्यार है वहां का व्यवहार कौन सा होगा, है? जहां स्नेह और प्यार है वहां का व्यवहार भी कौन सा हो जाता है, स्नेह और प्यार वाला हो जाता है। और जब स्नेह प्यार वाला हमारा व्यवहार है तो वायुमंडल क्या हो जाता है, है? शुद्ध हो जाता है ना। आज संसार के अंदर जो वायुमंडल बिगड़ा हुआ है, है ना, उसका मूल कारण क्या है? है दुनिया के अंदर आप देखेंगे कितना विकारी वायुमंडल है, है? और विकारी के साथ साथ स्वार्थ भरा हुआ वायुमंडल है। जहां विकारी और स्वार्थ भरा हुआ वायुमंडल होगा, उस वायुमंडल के अंदर आत्मा को क्या मिलेगा? है दुख, अशांति, बेचैनी, है ना? क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडल ही अशांत है। तो बाबा ने हम सबका ये परिवर्तन करके हम सबके जीवन में क्या दिया? हम कहते हैं ना ईश्वरी प्यार, अलौकिक स्नेह। तो संबंध चेंज किया ना बाबा ने, हम सबकी वृत्तियों को बाबा ने चेंज कर दिया है? तो वृत्तियां चेंज हो गई तो हम सबके अंदर वो ईश्वरी प्यार आ गए। यहां हम सब देखते हैं ना कि भाई यहां पर क्या है, प्रेम है, शांति है, सुख है, चैन है। कहते हैं ना मधुबन स्वर्ग है, बाबा का घर स्वर्ग है। कैसे बना स्वर्ग है? हम लोग तो वही है ना, हमारे अंदर तो कोई परिवर्तन, वही है, वही हम माँ थे, वही अभी है। लेकिन क्या हुआ? हमारी स्मृति परिवर्तन हुई है, जिसके आधार पर हम वही थे, लेकिन बाबा ने हमारी स्मृति को परिवर्तन कर दिया। बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, ये मेरा ईश्वरी परिवार है। तो ईश्वरी परिवार के अंदर क्या आ गया? प्यार आया, स्नेह आया। और जहां प्यार और स्नेह है वहां स्वार्थ नहीं है, और जहां स्वार्थ नहीं है वहां क्या है? है सुख और शांति है। दुनिया में दुख और अशांति का मूल कारण क्या है? हाँ, दो कारण बताते हैं, एक स्वार्थ और दूसरा इच्छाएं। दो कारणों से आज मनुष्य बहुत क्या है? दुखी है। इच्छाएं भी कितनी है, ये चाहिए ये चाहिए, और इच्छाओं के आधार पर स्वार्थ आता है। ये चाहिए, ऐसा चाहिए, साधन चाहिए, सामग्री चाहिए, है? और बाबा ने हम सबके जीवन में क्या भर दिया है? क्या भरा है? स्वार्थ को बाबा ने खत्म किया, और स्वार्थ को खत्म करने के लिए बाबा ने पहले हमारा संबंध चेंज किया। बाबा ने कहा तुम सभी मेरी आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो, और तुम सब एक परिवार के हो, और एक परिवार के हैं, और एक परिवार के होने के नाते हम एक से सर्व प्राप्ति करते हैं। दुनिया में परिवार में होते हुए भी उन्हें प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए स्वार्थ वृत्ति बढ़ती है। परिवारों में स्वार्थ वृत्ति क्यों आती है? हैं? क्योंकि प्राप्ति नहीं होती, वो प्यार नहीं है, वो स्नेह नहीं है, वो संबंध नहीं है। कहते ना संबंधों में मधुरता नहीं है, संबंधों में प्यार नहीं है, क्योंकि आत्माएं भिन्न भिन्न वैरायटी हो गई है। दुनिया में कह तो देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक की संतान है, लेकिन एक की संतान है, है? सिर्फ कहने मात्र कहते हैं एक की संतान है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के अंदर तो नहीं है। यहां बाबा ने हम सबको ये पक्का करा दिया ना। क्या कराया? हम एक बाबा के बच्चे हैं। तो एक बाबा के बच्चे हैं, एक परिवार के हैं, तो देखो परिवार में कितना स्नेह जागृत हो गया। अब हम सबके पास स्वार्थ वृत्ति नहीं है, क्यों स्वार्थ वृत्ति नहीं है, क्योंकि हम सबको देने वाला कौन है? एक बाबा है। और हम सब किससे लेते हैं? बाबा से लेते हैं। तो जब बाबा से लेते हैं तो दूसरे से लेने की इच्छा होगी? दूसरों से लेने की इच्छा कब होती है? दूसरों से भी कई बार ऐसा होता है, दूसरों से, आत्माओं से लेने की भी इच्छा होती है, तो आत्माओं से लेने की इच्छा कब होती है? जब बाप से नहीं मिलता है। बाप से नहीं लेते हैं तब आत्माओं के पास जाते हैं। भक्ति में तो आत्माओं से लिया, अभी परमात्मा से लेना है। बाबा कहते, बच्चे तुमको जो चाहिए मेरे से लो, क्योंकि वो खान है, वो सागर है, उससे हम जितना लेंगे उतना भरता जाएगा, भरपूर होते जाएंगे। आत्माओं से लेने में कभी भरपूर नहीं होंगे, और आत्माएं कभी भरपूर कर भी नहीं सकती है। आप देखो, कितना भी कोई आत्मा देने की इच्छा रखे हैं, लेकिन फिर क्या होगा? फिर भी पूरा नहीं कर सकते। आत्माएं आत्माओं से संपूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा से, शिव बाबा से लेने में क्या होंगी? संतुष्ट होंगे। तो हमें किससे लेना है? बाबा से। आज तक हमने किससे लिया? आत्माओं से लिया, और आत्माओं से लेते 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 खाली हो गए। कितना मिलेगा? वो भी खाली हुए और हम भी खाली हुए, क्योंकि हमारे अंदर लेते हुए भी हमें प्राप्ति नहीं हुई, और अभी हम बाबा से लेते, परमात्मा से लेते हैं, तो हम सब भरपूर होते जाते हैं। तो अपने को भरपूर करने के लिए हमें किससे लेना है? बाबा से लेना है। तो जितना हम बाबा से लेते जाएंगे, अपने को भरपूर करते जाएंगे, उतना अपने पास जमा होता जाएगा, और जो आत्माएं बाबा से लेंगी वो औरों को भी दे सकेंगी। आत्माओं से लेंगी वो आत्माएं दूसरों को दे सकेंगे? क्यों? क्यों नहीं दे सकेंगी? क्योंकि आत्माओं से लेते लेते आत्माएं खाली रहती हैं, उसके पास जमा ही नहीं होगा तो कैसे देगा? खुद ही मांगता रहता है, खुद ही लेता रहता है, तो कितना देगा? देने के लिए क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। तो वो किससे? बाबा से। हम जितना लेंगे उतना हमें मिलता जाएगा और हमारे पास जमा होता जाएगा। तो बाबा हम बच्चों को अब देने के लिए आया, भरपूर करने के लिए आया। बाबा हम बच्चों के पास कोई भी कमी नहीं रखता है। देखो, बाबा ने कोई हम सबके जीवन में कोई कमी रखी है? चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, बाबा ने हम बच्चों को हर एक प्रकार से क्या किया है? भरपूर कर दिया है, और हम भरपूर आत्माएं हैं। तो जो भरपूर होगा वो क्या करेगा? फिर औरों को भी देगा। तो बाबा ने हम सबको दो कार्य दिए, एक भरना है और देना है। खाली भरना ही नहीं है, देना भी है ना। अगर देते जाएं और भरे नहीं तो भी खाली हो जाएगा। तो दोनों काम साथ में करने, भरना भी है और देना भी है। तो देने से ही भरता है, जितना हम बांटेंगे उतना भरता जाएगा। जैसे कहा ना बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम सकाश दो, वृत्ति से वायुमंडल को बदलो, तो पहले तो मेरी वृत्ति अगर चेंज होगी तो मैं दूसरों को की वृत्ति को भी परिवर्तन कर सकते हूं। तो बाबा ने हम सबको भी यही लास्ट सेवा दी है कि बच्चे अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, दृष्टि और वृत्ति से अभी सेवा करो है? अब दृष्टि और वृत्ति से सेवा कौन करेंगे? जिसकी वृत्ति खुद की श्रेष्ठ होगी वही दूसरों की वृत्ति को क्या कर सकेगा, चेंज करेगा। अगर अपनी ही वृत्ति श्रेष्ठ नहीं है तो दूसरों की वृत्ति को, दूसरों को वाइब्रेशन नहीं पहुंचेंगे है? कहते ना जो खुद सच्चा होगा, सच्चाई सफाई होगी है, तो उसके वाइब्रेशन मिलते हैं। झूठ वाले के भी वाइब्रेशन पहुंचते हैं, सच्चे वाले के भी वाइब्रेशन पहुंचते हैं। देखो दृष्टि के लिए हम कहते हैं कि कोई हमको दृष्टि से देखता है, है? कोई अच्छी श्रेष्ठ नजर से, प्यार की नजर से देखता है, जैसे लौकिक माँ है, है? तो माँ भी तो देखती है ना, है? तो उसकी दृष्टि में क्या होती है, ममता होती है, है? उसके पास स्वार्थ नहीं होता है, ममता होती है। तो वो ममता की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो उससे हमें प्यार मिलता है, है? कोई स्वार्थ की दृष्टि से देखता है तो क्या मिलता है, है? उसकी भी फीलिंग आती है, है कि ये मेरे को किस दृष्टि से देख रहा है, इसके अंदर कौन सी वृत्ति है, है ना? तो वृत्ति जैसी होती है, वृत्ति अर्थात अपने भाव अंदर के, है? अंदर की भावना कैसी है, भाव कैसे हैं, वो कार्य करते हैं। अगर अंदर के मेरे भाव स्वार्थ के हैं तो हमारी वृत्ति भी वैसी ही जाएगी, अगर स्वार्थ रहित होगी तो हमारी वृत्ति वैसे ही जाएंगी। पहले क्या होता था, वृत्ति से ही कहते ना, दृष्टि वृत्ति और स्मृति, जैसी वृत्ति होती थी वैसी स्मृति, और जैसी स्मृति है वैसी हमारी वृत्ति बनेगी, है? तो वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने हमें बहुत श्रेष्ठ ये ज्ञान दिया है जिसके आधार से हम अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। और वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहले हम आत्माओं को दृढ़ निश्चय बाप पर, अपने आप पर, और साथ साथ इस पर ड्रामा पर भी, हा? ये ड्रामा कल्याणकारी है अगर हमें ये निश्चय है तो हमारी वृत्ति श्रेष्ठ। हर आत्मा का इस ड्रामा के अंदर पार्ट है, ये अगर हमें स्मृति है तो क्या होता है, हमारी वृत्ति वैसी श्रेष्ठ रहती है, है? हम उस आत्मा के दोष नहीं देखेंगे, दोष नहीं निकालेंगे, भाई हर एक आत्मा का पार्ट है। देखो बाबा हम बच्चों को किस नजर से देखते हैं, बाबा की हम सबके प्रति कौन सी दृष्टि है और कौन सी वृत्ति है, है? बाबा की दृष्टि है ये सब मेरे बच्चे हैं, वृत्ति है मुझे इन आत्माओं का कल्याण करना है, ये वृत्ति है ना बाबा की, क्या है, मुझे इन आत्माओं का कल्याण करना है। इसीलिए बाबा का हमेशा हम सब आत्माओं के प्रति क्या रहती है, रहम की भावना है, कल्याण की दृष्टि। बाबा कभी हम बच्चों को अकल्याण की दृष्टि से नहीं देखता है, कभी सोचता भी नहीं है बाबा, है? देखो हम आत्माएं कैसी, बाबा के सामने आत्माएं आती है, कोई दुर्गुण वाली आत्माएं आती है, कोई श्रेष्ठ आत्माएं आती है, कोई पतित आत्माएं आती है, है? कैसी भी बाबा के सामने आत्मा आती है बाबा कैसे देखता है, प्यार से देखता है, ये मेरे बच्चे हैं, है ना? ये मेरे बच्चे हैं। जब बाबा ये संकल्प से देखता है तो कैसी भी आत्मा बाबा के आगे पिघल जाती है। पिघल जाती है, नहीं पिघल जाती है? है? कितने भी कठोर संस्कार वाली आत्मा आएगी लेकिन बाबा के आगे वो परिवर्तन हो जाती है। क्यों? भगवान की वृत्ति में ये है, ये सब मेरे बच्चे हैं, मुझे इन सब का कल्याण करना है, मैं कल्याण के लिए आया। इस संकल्प से ही बाबा ने हम सबको उत्पन्न किया ना। कहते ना, भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची। क्या संकल्प किया है बाबा ने? ये संकल्प किया, सब बच्चों का आवाहन किया ना, तब तो हम आए हैं कि हम ऐसे ही आ गए। भाई बाबा के हम कैसे बने? भगवान ने हमें संकल्प करके बुलाया। हमने तो नहीं चाहा था कि हम भगवान के बन जाए। हैं? चाहता कभी बाबा प्रश्न पूछता है ना कि बच्चे तुमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने तुमको ढूंढा है? हमने नहीं ढूंढा। इतनी भक्ति में मेहनत की, कितनी मेहनत की, आधा कल्प भक्ति की है, कितना पुरुषार्थ किया, कितनी तपस्या की, तो ढूंढने के लिए की ना है, ढूंढ नहीं पाए ना है, और बाबा ने ढूंढ लिया ना है। इसीलिए बाबा नंबर ले जाता है, बाबा कहता है मैंने ढूंढ लिया। क्योंकि बाबा ने संकल्प किया कि मुझे बच्चों को है कल्याण करना है, मुझे नई दुनिया बनानी है, और नई दुनिया के अंदर मुझे कौन से बच्चे चाहिए है? होवनहार देवता चाहिए, है ना? तो हम सब होवनहार देवताओं को बाबा ने ढूंढ के निकाला, और बाबा उसी दृष्टि से देखता है। बाबा हम सब बच्चों को कौन सी दृष्टि से देखता है? ये होवनहार देवताएं। कभी बाबा ये कहता है ये फलाना ऐसा बच्चा है, वैसा बच्चा है, वो बच्चा है, क्या बोलते बाबा? होवनहार दे, यही देव आत्माएं हैं। और हम सब उस दृष्टि से नहीं देखते हम सब अगर उस दृष्टि से देखें ये सब बाबा के बच्चे हैं, ये सब होवनहार देवताएं हैं, बाबा इन सबको देवता बना रहा है, ये सब हमारे भाई बहने हैं, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? वायुमंडल परिवर्तन हो जाए, और फिर उसी वायुमंडल से हम दूसरों की भी सेवा कर सकेंगे। आज मुख से सेवा तो बहुत कर लेते हैं, बाबा कई बार कहता है ना, बच्चे मनसा सकाश दो। अब मनसा सकाश कौन दे सकेगा? है? बच्चे देंगे ना, कैसे देंगे? सकाश कौन दे सकेगा? जो खुद भरपूर होगा वो सकाश दे सकेगा। और हाँ, शुभ भावना और शुभ कामना किसकी पहुंचेगी? है? जो शुभ भावना वाला होगा उसकी पहुंचेगी। अगर अंदर में कोई व्यर्थ बातें होंगी, व्यर्थ संकल्प होंगे, तो भावना पहुंचेगी? कितना भी बैठ के हम योग लगा ले हैं, मैं उसको शुभ भावना पहुंचाऊं, शुभ भावना पहुंचाऊं, पहुंचेगी? जब तक हमारी वृत्ति के अंदर भाई भाई की दृष्टि नहीं आएगी तब तक हमारी शुभ भावना नहीं पहुंचेगी। शुभ भावना को पहुंचाने के लिए हमें अपने अंदर, जैसे बाबा के अंदर है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इन बच्चों को देवता बनाना है, मुझे नई सृष्टि बनानी है, ये बाबा के अंदर भावना थी और बाबा ने ये कार्य किया, तब हम सब इतने बाबा के बच्चे आए। अगर हम सब के अंदर भी यही भावना आ जाए, ये वृत्ति आ जाए, तो सृष्टि परिवर्तन, कहते ना वृत्ति से सृष्टि परिवर्तन, तो सृष्टि में कौन होंगे? हम ही होंगे ना। तो हमें वो कार्य करना है कि भाई भाई की दृष्टि को अभी हमें बहुत मजबूत करना है, और जितनी मजबूत होती जाएंगी उतने वाइब्रेशन भी मजबूत हो जाएंगे। तो वाइब्रेशन बनाने के लिए हमें भाई भाई की वृत्ति को पावरफुल बनाना होगा, आत्मिक दृष्टि को पावरफुल बनाना होगा। देखो बाबा ने सबसे पहले अभ्यास क्या किया, यही किया ना, बाबा का अभ्यास क्या था, यही था ना, ब्रह्मा बाबा का अभ्यास क्या था, यही था। और बाबा ने यज्ञ में सबको क्या अभ्यास कराया, आत्मा का कराया ना, है? तो आत्मा का अभ्यास खुद भी किया कराया, और आज तक भी बाबा करा रहा है, और हम सब इसी अभ्यास में कच्चे हैं, है ना, इसमें कच्चे हैं, आत्मा के अभ्यास में ही कमजोर है ना। जो बाबा चाहता है वो स्थिति हमारी अब तक नहीं है ना, और उसके लिए बाबा हमेशा योग कहता, बच्चे क्या समझो, आत्मा समझो। तो जब आत्मा आत्मा समझेंगे तो आत्मा का वाइब्रेशन जरूर पहुंचेगा। तो वाइब्रेशन को, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपने अंदर ये आत्मिक भाव को पक्का करें, और इसके वाइब्रेशन पहुंचते जितनी हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाती है उतना अन्य आत्माओं के पास हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन पहुंचते हैं। देखो आप किसी के पास खड़े होंगे, अगर उनके मन के विचार अगर अच्छे श्रेष्ठ हैं तो आपको भी उनसे क्या वाइब्रेशन मिलते, शांति के वाइब्रेशन, सुख खुशी के वाइब्रेशन मिलते। अगर उनके वाइब्रेशन दूसरे चलते हैं तो उनसे वो अशांति ही मिलती है। तो अगर हमारे ये वाइब्रेशन शुद्ध आत्मिक दृष्टि है तो हर आत्मा को कौन सा शुद्ध वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन उसको खींचेगा, है? तो उसको खींचने के लिए हमने हमारे अंदर ये आत्मिक भाव को अभी लाना है, और जितना हम आत्मिक भाव को लाते जाएंगे उतना वाइब्रेशन और फैलता जाएगा। देखो आज हम सब मधुबन में आते हैं, आते नहीं आते, तो मधुबन के अंदर क्यों हमको बहुत वाइब्रेशन खींचता है, शांति का वाइब्रेशन है, खुशी का वाइब्रेशन है, प्राप्ति का वाइब्रेशन है। यहाँ कभी अप्राप्ति लगती है, क्या लगती है, क्योंकि सबके संगठन के वाइब्रेशन है यहाँ, है जिससे हमें वो शांति और सुख की अनुभूति होती। तो जो हम अब ले रहे हैं बाबा कहता उनको भी क्या करो, बांटते जाओ, वो वाइब्रेशन फैलाते जाओ। और वो वाइब्रेशन फैलाने के लिए हमें एक तो अमृत वेला बहुत पावरफुल करना है। जितना हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा ना, अमृत वेले हम सब क्या करते हैं, है? योग करते हैं ना, किस लिए योग करते हैं, अमृत वेले जो योग करते हैं वो किस लिए योग करते हैं, है? अपने लिए भी योग करते हैं और साथ साथ अन्य आत्माओं को भी शक्ति का दान देते हैं, है? वाइब्रेशन फैलाते हैं। मुझे इस बात पर एक बात याद आती है कि अमृत वेले का जो योग है, बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अमृत वेले का योग जो है वो संगठन में होना चाहिए, है ना? जितना संगठन में अमृत वेले का योग होता है उतना पावरफुल होता है, और संगठन के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं, और संगठन से क्या होता है, शक्ति बढ़ती है, अलग अलग। अब कोई कहेंगे हम लोग तो परिवार में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो अकेले करेंगे ना, है कि नहीं करेंगे, भाई परिवार में भी तो रहते दो साथ में करें, है? इसकी एक बार हमारी दादी जान की क्लास करा रही थी, बड़ी बहनों से दादी मिल रहे थे, हम सबसे एक दादी ने प्रश्न पूछा, आप सभी बहने अमृत वेला करती हो? तो हमने दादी को बड़े प्यार से कहा, जी दादी करते हैं, करते हैं तो कहेंगे ना, तो कहाँ कहाँ करती हो? दूसरा प्रश्न ये पूछा, कहाँ करती हो? तो किसी ने कहा कमरे में करते हैं, किसी ने कहा बाबा के कमरे में करते हैं, किसी ने कहा हॉल में करते हैं, ज्यादातर बाबा के कमरे में करते हैं। तो दादी ने कहा कि तुम सभी बाबा के कमरे में योग करती हो, तुम किस लिए योग करती हो? हम बहनों से प्रश्न पूछा, तुम लोग किसके लिए योग करती हो है? तो हमने सबने कहा दादी सबको सकाश देते, तो कहती कमरे में बैठ के सकाश देती हूँ है, कमरे में बैठ के सकाश देती हो है? बाबा के कमरे में भी तुम बैठती हो तो तुम और बाबा दो होते हो है, तुम बाबा से लेती हो, तुम्हारे सामने लेने वाले तो कोई नहीं होते ना। बाबा के कमरे में हम सब बैठते हैं तो बाबा से हम लेते हैं, उस समय तो हम लेते हैं, देने के लिए तो हमें सामने चाहिए ना, देने के लिए तो सामने चाहिए ना। तो दादी ने कहा आप अपने लेने के लिए भले बाबा के कमरे में बैठो, लेकिन जो 4 से 4:45 का जो समय है वो सारी सृष्टि को सकाश देने का समय है, सर्व आत्माओं को देने का समय है। इसलिए आप देखेंगे दादी थी ना हमेशा, जानकी दादी हमेशा अमृत वेले कहाँ आती थी? हॉल में। कहती मैं जाऊं सबको, इतने बाबा के बच्चे बैठे इनको सकाश दूं है? सकाश देने के लिए तब तो वायुमंडल बनता है। एक बार हमारे पास गुजरात की बहनें इकट्ठी हुई तो दादी ने एक संकल्प बोला, कहती है कि मेरा एक संकल्प है तुम सब पूरा करो। तो कहा दादी क्या संकल्प है आपका? तो बोला 1 लाख की सभा बुलाओ और मैं अमृत वेले सबको योग कराऊंगी। सबको मैं सकाश दूंगी, दादी का मतलब मुझे देना है, सबको बुलाओ। तो दादी ने यही कहा कि अमृत वेले का जो समय है वो इतना पावरफुल समय, अपना योग करो और आत्माओं को दो। तो जितना अमृत वेला पावरफुल होगा उतना वाइब्रेशन क्या होगा चारों ओर पहुंचे। मम्मा 2 बजे उठती थी, बाबा कितने बजे उठ करके सकाश देता था? हमने कहा ना बाबा ने हमको आह्वान करके बुलाया, तो बाबा ने ऐसी तपस्या करके हमको खींचा है। तो औरों को भी हमें अपना बनाना है, औरों को सकाश देनी है तो क्या करना है? अमृत वेला बहुत पावरफुल होना चाहिए। इसका मैं एक मिसाल सुनाती हूँ आप सबको। हमारे पास एक बहन थी, अच्छा सेंटर चले, बहुत पुराना सेंटर था, बहुत पुराना 40 साल पहले का, पर वहां सेवा नहीं होती थी, जमता ही नहीं था सेंटर। कितनी बहनों को चेंज किया लेकिन सेंटर नहीं जमता था। बहुत प्रोग्राम भी किए, बाबा कहता है ना कोई धरनी ऐसी होती है, हैं? हम लोग ऐसे कह के बैठ जाते थे कोई धरनी ऐसी है, कोई धरनी ऐसी है, हैं? बीज ऐसा है। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक बहन को वहां रखा हमने, हैं? पहले वो थोड़ा बिचारी कहती थी नहीं दीदी सेंटर ऐसा है वैसा, मैं और सेवा करूं, लेकिन फिर भी उसको प्यार से कहा तुम योग करो तपस्या करो तो बाबा अपने आप तपस्या का फल दिखाएगा है? उस बहन ने एक संकल्प लिया, 3 बजे उठती थी, 3 बजे अमृत वेले उठ के स्नान आदि करके बाबा के लिए इतना भोग बनाती थी, 1 डब्बी इतना 3:30 बजे, और 3:30 से वो योग में बैठती थी, और उसने 21 दिन का नियम लिया कि मेरे को 21 दिन ये करना है, और करके वो ऐसा वाइब्रेशन, बाबा तेरी आत्माएं जो भी हैं सबको तू यहां बुला और तेरा भोग खिला है। और फिर जब क्लास में जो आते थे उन सबको वो भोग खिलाती थी, 6 बजे तक योग करती थी पूरा बैठ के, पावरफुल एकदम। आप नहीं मानेंगे, आज वो ही सेंटर बहुत अच्छा हो गए, 100 स्टूडेंट हो गए। किससे? वृत्ति से, स्मृति से, वाइब्रेशन से। क्या हो गया? वायुमंडल बदल गया ना। हम ये कहें कि नहीं कैसे होगा, बाबा कहता है बाबा आवाहन करो। हमारी दादियों ने क्या किया? शुरू शुरू की हम सब हिस्ट्री सुनते हैं तो दादियों ने क्या काम किया? हा? जमुना के घाट पे जाके वाइब्रेशन देती थी, आह्वान करती थी, आओ आओ आओ। ऐसी हम सब आ गए क्या? है? हम सब ऐसे थोड़ी आ गए। इतने हम सब आ गए कैसे आए? बाबा का और हमारी दादियों की तपस्या, उनके वाइब्रेशन हमको खींच के ले आई है? तो पहुंचाए ना, तो अभी हमारे पास पहुंचे, हम आ गए, हमारा काम है औरों को पहुंचाना है। तो अभी ये वाइब्रेशन हमको औरों को पहुंचाने, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत काम करते। एक को अगर एक संकल्प आता है, वो संकल्प दूसरे को जरूर पहुंचेगा, दूसरे को, तीसरे को पहुंचेगा, चाहे व्यर्थ आएगा चाहे समर्थ आएगा, एक से दूसरे को जरूर पहुंचता है, है? समर्थ वातावरण बनाना है तो समर्थ संकल्प करो, है? आज हम कहते हैं एक ब्रह्मा बाबा को संकल्प था ना कि मेरे को ये नई दुनिया बनानी है, एक ने त्याग किया तो कितने ब्राह्मण बने। अगर उस समय बाबा ये सोच लेता कि मैं ये कैसे करूंगा, मैं तो अकेला हूं, है? सोच सकता था ना ब्रह्मा बाबा कि भाई शिव बाबा ने ब्रह्मा को साक्षात्कार कराए, बच्चे तेरे को ये काम करना है, उस समय तो अकेला ही था ना, है? और अकेला था लेकिन बाबा ने संकल्प किया, तो आज इतना बड़ा बाबा की सेवा का विस्तार बढ़ गया। तो हम जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं ना, वो श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि आएगी। अगर और कोई संकल्प ऐसे संकल्प करते तो वैसा वातावरण बनता है। संकल्प से ही सिद्धि है। अब संकल्प कौन से करने हैं वो खुद सोचना। आज दुनिया के अंदर जिन्होंने भी जो कार्य किए हैं संसार में, वो एक कोई संकल्प आता है पहले, है? फिर उसके बाद आगे बढ़ता है ना, है? कि ऐसे नहीं एक से दूसरे को। उसमें एक कहानी मैं सुना देती हूँ, सुनाते कभी कभी, अकबर बीरबल की एक कहानी है कि एक बार अकबर ने अपने राज्य के अंदर कहा कि भाई मेरे राज्य के अंदर सच्चे ईमानदार कौन है, मेरी आज्ञा पर मेरी कौन चलते हैं। तो बीरबल को कहा कि वो मुझे पता लगाना है। तो बीरबल ने उसकी युक्ति सुनाई। क्या युक्ति सुनाई? कि भाई आप एक तालाब खुदवाओ, है? तालाब खुदवाया और उसके अंदर बोला कि अमावस की रात्रि में कहा कि सभी प्रजा में अनाउंस कर दो कि इस तालाब को दूध से भरना है, है ना? तो सभी को अनाउंस कर दिया, दूध से भरना है, और सब चल दिए भरने के लिए। किसी को संकल्प आया सब दूध लाएंगे तो मैं पानी डालाऊंगा तो मेरा क्या पता चलेगा, है? क्या पता चलेगा? तो जब सवेरे देखा तो तालाब पानी से भरा हुआ, तो क्या हुआ? एक के संकल्प सबको पहुंच गए, है? तो ये संकल्प से ही क्या होती है, सृष्टि रची जाती है। इससे ही वाइब्रेशन पहुंचते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदैव संकल्प कौन से करो, श्रेष्ठ समर्थ संकल्प करो। हम समर्थ बाप के बच्चे हैं तो हमारे सबके संकल्प कौन से होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए। और जब समर्थ संकल्प होते हैं तो सारी क्या हो जाएंगे, समर्थ वाइब्रेशन बनेगा। तो वाइब्रेशन को बनाने के लिए पावरफुल बनाने के लिए हमें अपने संकल्पों को समर्थ बनाना है, संकल्पों को पावरफुल बनाना है, संकल्पों को व्यर्थ से मुक्त करना है। और पावरफुल संकल्पों के लिए भी हमें क्या चाहिए, वैराग्य वृत्ति चाहिए। अगर कोई वृत्ति में ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, आत्माओं से लेने की अगर इच्छा होगी तो कभी भी हम संपन्न नहीं बन सकते। संपन्न बनने के लिए हमें बाबा से लेना है और बाबा से लेकर के क्या करना है, औरों को देना है, तब ही हम वातावरण को बहुत बहुत पावरफुल बना सकते हैं। और वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए ही बाबा ने हम बच्चों को अब ये कार्य दिया है कि बच्चे तुमने जो कुछ पाया है अभी उसको क्या करो, दूसरों को देते जाओ और वो वातावरण फैलाते जाओ। अभी अशुद्ध वातावरण, अशुद्ध संकल्पों का वातावरण नहीं बनाओ। शुद्ध संकल्पों का वातावरण बनाएंगे तो वातावरण क्या बन जाएगा, बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। तभी हम सतयुगी नई दुनिया ला सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इस नुमा शाम के समय मैं शिव बाबा का परम पवित्र श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए प्यारे बाबा से अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियों को भरने के लिए मैंने प्यारे बाबा को अपना बनाया है। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली जो बाबा ने कोटों में से भी कोई मुझ आत्मा को चुनकर अपना बनाया। ये श्रेष्ठ भाग्य है। मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। इसलिए प्यारे बाबा का हम कितना थैंक्स कहें, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कि हम भगवान के बच्चे बनेंगे, और भगवान हम बच्चों को अपना बनाकर इतना भरपूर करेगा। हमें अपने भाग्य पर गर्व है, नाश है। ये भाग्य हम आत्माओं को संगम पर ही प्राप्त होता है। जिस भाग्य के लिए ऋषि मुनि महात्मा विद्वान आचार्य पंडित सब तरसते हैं, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। इस भाग्य का सिमरन करते करते प्यारे बाबा के कितने गुण गाए, प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया। इस भाग्य को अब हमें दूसरों की सेवा के प्रति लगाना है। भाग्य बांटने से भाग्य बढ़ता है। बाबा ने हम सबको दाता बनाया, क्योंकि हम सभी आत्माएं देव पद प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, देव पद पाने वाली आत्माओं का कर्तव्य है आत्माओं को देना। सिर्फ आत्माओं को ही नहीं, बाबा ने हम सबके ऊपर जिम्मेवारी रखी है। बच्चे, तुम्हें सृष्टि को नई सतो प्रधान सृष्टि बनानी है। तो तो नई सतो प्रधान सृष्टि बनाने के लिए आत्माओं को भी पवित्र बनाना है, तो साथ साथ प्रकृति को भी पवित्र बनाना है। जब प्रकृति सतो प्रधान बनेगी तब सतो प्रधान दुनिया आएगी। प्रकृति में भी हमें वाइब्रेशन फैलाने हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सकाश देने के लिए अपने को सृष्टि के ग्लोब पर खड़ा कर सर्वात्माओं को और सृष्टि को पांचों तत्वों को अपने सकाश दो। सभी सृष्टि के ग्लोब पर खड़े होकर आपके नीचे सब आत्माएं खड़ी हैं, उन सब आत्माओं को इमर्ज कर अपने शुभ वाइब्रेशन पवित्र वाइब्रेशन रहम के वाइब्रेशन कल्याण की भावना आत्मिक भाव सब आत्माओं के ऊपर किरणों की तरह आप सभी ज्ञान सूर्य शिव बाबा के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो अपने सूर्य की किरणों से सबके ऊपर शांति की, सुख की, प्रेम की, आनंद की, खुशी की, चैन की सब किरणें पहुंचाओ। आज सब आत्माएं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई है। प्रकृति तमो प्रधान है, इसीलिए चारों तरफ उपद्रव करती रहती है। हम पवित्र आत्माएं इस प्रकृति को भी अपने वाइब्रेशन से पवित्र बनाकर सतयुग की दुनिया में पांचों तत्व सतो प्रधान हमारे ऑर्डर में चलने वाले होंगे। बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे अपनी प्रकृति को भी अपने ऑर्डर में चलाओ। जब अपनी प्रकृति ऑर्डर में चलेगी तो उस प्रकृति पर भी वाइब्रेशन पहुंचेंगे।
दुर्लागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांद